कृशिष्ट भगवान बचांसि में योन्तः प्रवेश मम बाच मिमां प्रशोप्तां संजीवयत अखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यान सहस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण आप लोग मेरे मुख से सुनने के लिए अवसर दिए मुझे बोलने का मौका दिए इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है श्रीमद् भागवत 10 विषयों का वर्णन करता है और भगवद गीता 5 विषयों को। सुत गोस्वामी कहते हैं कि भागवत में 10 विषय हैं अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो 10 विषय हैं सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वंतर ईशानु कथा मुक्ति और आश्रय। तो मैं इन सभी विषयों का परिभाषा तो नहीं बता सकता। इसमें एक विषय है ईशानु कथा। ईशानु कथा में 3 शब्द हैं ईश अनु कथा। ईश का मतलब भगवान और अनु मतलब भगवान के फॉलोअर भगवान के पीछे चलने वाले भगवान के भक्त और कथा मतलब कथा उनके विषय में। तो भागवत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भगवान के भक्तों की कथा जिसको सुखदेव गोस्वामी ने एक स्कंध स्पेशल दिया 9 स्कंध जिसमें भगवान के प्रिय भक्तों की कथा है। तो भगवान के भक्तों की कथा का क्या महत्व है तो इसको हम सरल भाव से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति जो बनना चाहता है उसके विषय में जानना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके जीवनी के विषय में जानना चाहिए। जानने का प्रयास करता है अमुक इंजीनियर अमुक डॉक्टर आईएएस कैसे बना किस तरह से उसकी क्या दिनचर्या रही क्या उसका पढ़ने का ढंग रहा किस तरह से इस स्थान को प्राप्त किया। उसी प्रकार जिसे वास्तव में भगवान के भक्त बनना है भगवान की भक्ति करना है प्रेम सेवा करना है तो उसको भक्तों को जीवन कथा जरूर सुननी चाहिए। यह भागवत का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो 9 स्कंद में 2 महत्वपूर्ण वंशावली का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने भक्तों का चरित्र कहा है जिनमें राजर्षियों का चरित्र आया है। तो जो राज परिवार में भक्त हो जाते हैं उनको राजर्षि कहते हैं। तो सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी ने अनेक भक्तों का चरित्र प्रस्तुत किया। उसी क्रम में एक परंपरा चली जो भक्तों की कथा को लिखा गया, जिसको भक्तमाल कहते हैं। भक्तों का चरित्र, भक्तों की माला, भक्तों की कथाओं की एक माला तैयार की गई। उस श्रृंखला में बहुत से भक्त आए, तो उनके चरित्र पढ़ने से भगवान के चरित्र से भी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वह व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन में भगवान को स्वीकार किया, भगवान के प्रति समर्पण किया, भगवान से प्रेम किया और भगवान उसके साथ कैसा व्यवहार किए, यह महत्वपूर्ण अंश है भक्तों के जीवन में सुनने के लिए। तो आइए हम लोग आज श्रील प्रभुपाद के कुछ चरित्र पर विचार करेंगे, सुनेंगे किस तरह से श्रील प्रभुपाद ने महान संघर्ष करके आज यह रूप प्रस्तुत किया है। संयोग से प्रसंग उस समय का है, आज का विषय, कि अभी इस्कॉन का कोई रूपरेखा तैयार नहीं हो पाया था और प्रभुपाद अपने देश को छोड़कर एक ऐसे अपरिचित जगह में चले गए थे जहां उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था, जो सहयोग देने वाला। ऐसे बिल्कुल एकांतिक अवस्था में केवल भगवान ही अपने हैं, जहां कोई नहीं है वहां वो हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसमें भगवान नहीं उपस्थित हैं। यह अनुभव कराने के लिए भगवान ने उनको एक ऐसा अवसर दिया जहां केवल उनका स्मरण किया जाए और उनकी सहायता से ही आगे बढ़ा जाए। तो इसके पहले आप लोग सुने होंगे, मुझे यहां से पढ़ने के लिए कहा गया कि जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में हैं, उनका एक युवक सहयोगी मिला डेविड नाम का, जो नशे का शिकार था। प्रभुपाद उसे कुछ आशा रखते थे, यह मेरी सहायता कर सकता है, उत्सुक है, युवक है, इसके अंदर उत्साह है। लेकिन उसके गलत आदतों से प्रभुपाद परेशान थे, बिल्कुल परेशान थे, कर भी कुछ नहीं सकते थे। यत किंचित सहायता करने वाला केवल वही एक दिख रहा था। तो आप सुने होंगे कि किस प्रकार वह हरकत करता रहता था, कभी नशीला पदार्थ खाकर। प्रभुपाद को ऐसे समय गुजारना पड़ा। अमेरिका में ऐसे सनकी लोगों के बीच प्रचार कर पाना कितना कठिन हो रहा था, पागल लोगों के बीच में। जिस दिन वे बोस्टन बंदरगाह में पहुँचे थे, उसी दिन एक पूर्व दृष्टा कवि के समान एक कविता लिखी। चलते समय वो जहाज में ही कविता लिखे, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण युक्त कविता बंगला भाषा में, कि हे प्रभु, पता नहीं मुझे क्यों यहाँ लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल सुनसान अपरिचित, जहाँ कोई अपना नहीं, मुझसे आप क्या करा सकते हैं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, फिर भी आप मुझसे कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए इस अवस्था में, वृद्धावस्था में, अस्वस्थ अवस्था में मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरणा दिए, व्यवस्था किए। पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हैं श्रील प्रभुपाद। मेरे प्रिय प्रभु, मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, अब आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं, किंतु मेरा अनुमान है कि आपका यहाँ कोई काम है, अन्यथा आप मुझे इस भयानक स्थान में क्यों लाते। उनकी निर्धारित इस प्रकार प्रभुपाद जी सोच रहे थे। होता है ऐसा, जो व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब कुछ अद्भुत काम होने लगता है तब तो अपनी सामर्थ्य की बात नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब भक्तों की प्रेरणा से चैतन्य चरितामृत लिखने लगे, तो अपने दशा का वर्णन करते हैं, पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की प्रेरणा मिली, मेरे अंदर क्यों उत्साह आ रहा है, क्यों भक्त लोग मुझे ही प्रेरित कर रहे हैं जबकि मेरी दशा असमर्थ है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में स्वयं अपने विषय में कहते हैं कि मैं पूरी चैतन्य कथा लिख दूंगा, मुझे विश्वास नहीं है। मेरी जो दशा है इसे नहीं लगता कि मैं लिख दूंगा, इसलिए मैं सूत्र रूप में लिख रहा हूं। अगर मैं आदि लीला प्रारंभ करूं तो लगता है कि इसी को पूरा नहीं कर पाऊंगा और शरीर पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं सूत्र रूप में संपूर्ण लीलाओं को लिख रहा हूं। आप लोग क्षमा कीजिएगा, आप लोगों के मन में होगा कि विस्तार से कथा कह पाऊं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। शेष लीलार सूत्र गण कैनी कैनु कुछ विवरण यहा विस्तारित चित है। जो मैं अंत लीला को सूत्र रूप में लिख दिया, मध्य लीला को लिख दिया, लेकिन मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मैं विस्तार से लिखूं। लेकिन थाके यदि आयु शेष, अगर जीवन बच जाएगा तो विस्तारी व लीला शेष, इस लीला को विस्तार से लिखूंगा, लेकिन मुझे अपने पर भरोसा नहीं। यदि महाप्रभु कृपा है, यदि महाप्रभु कृपा करेंगे तो अवश्य लिखूंगा। मेरी क्या दशा है, कहते आमी वृद्ध जरा तुर लिखिते कापये कर मने किछु स्मरण न है। मेरी दशा है कि मैं वृद्ध हूँ, वृद्ध जरा तुर हूँ और लिखने में भी हाथ कांप रहा है, मन में कुछ याद ही नहीं आता, स्मरण ही नहीं, जो याद है वो भी भूल जाता है। ना देखिए नयने, आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना सुनाए श्रवणे, कान से सुनाई भी नहीं दे रहा है, अगर कोई बतावे भी तो सुनाई नहीं दे रहा है। तबु लिखी ये बड़ा विस्मय, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इस प्रकार कहते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यह मेरा अपना मानना है कि मैं यंत्र हूँ और भीतर प्रेरणा करने वाले प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ वह मेरे बस की बात नहीं है, अगर कर दिया तो समझिए महाप्रभु की कृपा है। तो ठीक उसी तरह से प्रभुपाद भगवान के ऊपर अपने को पूर्ण आश्रित करके भविष्यवाणी करते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे प्रभु लेकर यहाँ आ गए इस मरुस्थल में जहाँ भक्ति का नामो निशान नहीं है। इसका अर्थ है कि मुझसे कुछ कराना चाहते हैं। स्थिति यह है कि अब ऐसे भयानक स्थान में है जहाँ प्रतिदिन वो कुछ कहना चाहते हैं, जिसको क्लास कहते थे, भागवत क्लास, कुछ कक्षाएं देना चाहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई होगा तब ना, चाहते हैं बोलना। एक लड़का था डेविड, लेकिन वह भी हिंसात्मक स्थिति में उतर गया, नशा खाता ठीक है, बेहोश रहे, लेकिन कुछ गड़बड़ करने लगा, पागल जैसा व्यवहार। किंतु इसके पहले भी उत्तेजनापूर्ण अवसर आ चुके थे। डेविड का आदत, विभिन्न गलत आदत, स्नान घर में फर्श पर साबुन छोड़ देना, रोज प्रभुपाद उसको उठाते थे और प्रभुपाद उसे ऐसा करने से मना करते थे क्योंकि उसे खतरा है। एक दिन डेविड को कुछ समझाने का कोशिश किए, तब तक क्रोध में भर गया, नशा खाया था, चिल्लाने लगा। किंतु दोनों में वास्तविक दुश्मनी नहीं थी, प्रभुपाद में और उस युवक में कोई झगड़ा नहीं था। आज की घटना भी व्यक्तिगत मतभेदों के कारण नहीं घटी थी, अचानक ही वो सनक गया, पागल हो गया। प्रभुपाद तेजी से आगे बढ़े, अब सोच रहे थे मैं क्या करूं, ये मारने पीटने लगेगा तो क्या करूंगा, भयभीत हो गए। लेकिन अब क्या करें, एक सुविधा तो मेरे पास है कि सिंधिया जहाज से उन्हें निःशुल्क यात्रा की सुविधा है, अगर मैं चाहूं तो इन भारत लौट सकता हूं, अपने घर वृंदावन जा सकते थे। किंतु ज्यों ही प्रभुपाद निराशा में वृंदावन लौटने की बात सोचने लगे, त्यों ही उनके मन में एक बहुत भारी तनाव, प्रेशर पड़ रहा था कि हमारे गुरु महाराज मुझे कुछ करने के लिए अमेरिका भेजे हैं, मैं उनके आदेश को लेकर आया हूँ। अटलांटिक पार करते समय उन्होंने लिखा था अपने संकल्प को, इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रबल इच्छा है महाप्रभु गौरांग का पवित्र नाम पश्चिमी संसार के सभी देशों में फैलेगा, अवश्य मैं इस कार्य को करूँगा, लेकिन यह प्रतिज्ञा लग रहा है पूरा नहीं हो पाएगा। रात होने के पहले अपने ठहरने के लिए कोई स्थान ढूंढ लेना है। अब डेविड के स्थान को छोड़ दिए थे, वहाँ रह नहीं पा रहे थे, लेकिन स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ कछाएं चल सके, प्रवचन हो सके। इसी को कहते हैं बिना किसी सरकारी समर्थन के, बिना किसी धार्मिक संस्था की सहायता के, बिना किसी संरक्षक के कार्य करना। इसका अर्थ था सर्वथा दुर्बल और सुरक्षित रहना। प्रभुपाद ने इस संकट का सामना कृष्ण की परीक्षा के रूप में स्वीकार किया। कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवत गीता के उपदेश की रक्षा प्रभुपाद करना चाहते थे। भगवान कहते हैं कि मैं सब अवस्था में रक्षा करता हूँ, जोग क्षेमम वहाम्यहम्। मुझ पर निर्भर रहना चाहिए, केवल मुझ पर आश्रित रहो और मेरे शरण में रहकर कार्य करो। ऐसी भक्ति सेवा में मेरे प्रति पूर्ण सचेत रहो, मेरे कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोध पार हो जाएगा। भगवान के इन वाक्यों पर प्रभुपाद विचार करते थे। प्रभुपाद ने कार्ल इयर जेंस को फोन करके उनसे सहायता मांगने का निश्चय किया। स्वामी जी की बाणी फोन पर सुनकर कार्ल ने समझ लिया कि यह आपत की स्थिति है। वह तुरंत सहमत हो गया कि प्रभुपाद उनके और उनकी पत्नी इवा के साथ रहने के लिए उनके घर आ सकते हैं। उनका निवास निकट ही बोवरी के 5 ब्लॉक पश्चिम में चाइना टाउन के पास सेंटर स्ट्रीट में था। कार्ल वहां पहुंच गया था प्रभुपाद को लेने के लिए। प्रभुपाद को पाकर कार्ल उन्हें लेकर सीधे AIR अटारी में अपने स्थान पर आया। वह स्थान उससे छोटा था जिसमें प्रभुपाद पहले रह रहे थे। उसमें बैठने के लिए बड़ी खुली जगह थी और उससे अलग रसोई घर और शयन कक्ष थे। वह जगह नकली और छाया में रखने वाले फूल पुष्पों से सजी थी। बहुत छोटे छोटे कई तकिए पड़े थे। एकदम वीडियो बना रहे हैं पूरा सीन। कार्ल की अटारी वोवरी की गंदी कारखाने जैसी जगह अटारी से अधिक साफ सुथरी थी। उसका फर्श चमकदार नारंगी रंग से रंगा था। कार्ल का कहना था कि वह जहाज के डेक जैसा लगता है। उनकी दीवारें और भीतरी छत सफेद थी और छत पर लगे 7 रोशनदान से प्रकाश आ रहा था। कार्ल और उनकी पत्नी इवा स्वामी जी को अपने घर के एक कोने में रहने के लिए परमिशन दिए। प्रभुपाद अपना सामान डेविड की अटारी में ही छोड़कर अकेले भाग आए थे, सामान लेकर नहीं आए थे और फिर कभी वहां जाना नहीं चाहते थे। इसलिए जरूरी सामान लाने के लिए उन्होंने कार्ल को कहा कि आप वहां से ले आइए। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि अधिकतर सामान जिसमें उनकी पुस्तकें बक्से और टेप रिकॉर्डर सम्मिलित थे वैसे ही छोड़ देना चाहिए वहाँ, बहुत ज़्यादा नहीं ला सकते हैं। यद्यपि उस समय तक डेविड पर LSD का प्रभाव कम हो गया था, किंतु फिर भी वह पागल बना हुआ था। जब कार्ल उसकी अटारी पर पहुंचा तो उसका दरवाज़ा बंद था, डेविड अंदर था। वह किसी को अंदर जाने से डर रहा था। यद्यपि अंत में राजी हो गया, उसने सभी खिड़कियों को बंद करके ताला लगा दिया था जिससे कमरा असह्य रूप में गर्म और घुटनकारी हो गए थे। बिल एपस्टीन भी उसी दिन वहां आ गए और उसने डेविड की दशा का वर्णन करके कह रहे थे कि इसे नार्कोसाइकोसिस अथवा मादक द्रव्य जात स्नायिकी बीमारी हो गई है। यद्यपि डेविड को इसका दुख था कि स्वामी जी पर उसने उत्तेजना प्रकट किया, किंतु बिल और कार्ल में कोई भी उसे ठीक से समझा नहीं पाया कि स्वामी जी उसके साथ फिर से रहें। अस्पष्ट था कि अटारी में राधा कृष्ण की मंदिर बनाने की प्रभुपाद की कल्पना समाप्त हो चुकी थी। कार्ल और बिल प्रभुपाद का कुछ सामान इकट्ठा करके ले गए और डेविड अटारी में पीछे रहता था, उसे एकांत चाहिए, वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। कार्ल इयरजेंस प्रभुपाद की रहन सहन की आदतें जानते थे। वह चाहते थे कि एक ऐसा स्थान मिल जाए जहाँ स्वामी जी सुख का अनुभव कर सकें, लेकिन उनका घर छोटा था। अध्ययन कक्ष हो, स्वामी जी के लिए घूमने का जगह हो, लेकिन वैसा नहीं। अपने घर में ही कुछ गद्दीदार आसन बना दिया और कमरे में सब तरह व्यवस्थित करके अभ्यागतों को आने के लिए व्यवस्था, आसपास अर्धवृत्त बनाकर फर्श पर बैठ सकते हैं, छोटा जगह था। काल की पत्नी को किसी स्वामी को घर में रहने देना पसंद नहीं था। किसी को वह घर में आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब क्या करें, काल के आग्रह पर किसी तरह राजी हो गई। कुछ दिन तो यह चलता रहा। प्रभुपाद सुबह में क्लास देना चाहते थे, कक्षाएं देना चाहते थे, कुछ नियमित लोगों को बुलाना चाहते थे, और वहाँ आने वाले कौन थे, हिप्पियों का झुंड जो नशा में पागल घुमा करते थे। उस ब्लॉक के पास रहते थे माइक ग्रांड, जेम्स ग्रीन और डेविड। एलेन भी एक बार आए। ऐसे कुछ हिप्पी लोग आ जाते थे तो कुछ लोग और आए, जिसमें डेविड भी। तो डान नानसन एक कलाकार एक विचार लिख रहा है कि मैं एक दिन कार्ल की अटारी में था और स्वामी जी घूमते हुए वहाँ आ गए। मुझे पहले से ही मालूम था कि वे डेविड के यहाँ से चले आए हैं। उनके पास अधिकतर गवैये आते हैं। उस दिन उनके पास सवेरे ही व्यक्तिगत बैठक का आनंद ले रहा था, और सचमुच यह बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि लगभग रात भर जगने वाले लोग स्वामी जी के साथ एक घंटे सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक बैठते थे। वे अपने हाथ के मंजीरों से डोट डोट डाह, डोट डोट डाह की ध्वनि से कीर्तन में उनका नेतृत्व करते थे। यह विचित्र लगता था, क्योंकि यद्यपि वे खूब पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन गहरे नशेबाज थे। किंतु कुछ समय तक उनमें से 9-10 गवैये स्वामी जी के कीर्तन में प्रत्येक दिन सुबह आने लगे। उन्हें बड़ा आनंद आता था। उनको सबसे बड़ा आनंद था कि सवेरे इस तरह का आनंद मिल रहा है। काल को लगा कि जो सर्जक समुदाय स्वामी जी से मिलने उनके कला कक्ष में आता है, वह शीघ्र ही उनके कीर्तन की मनोदशा में प्रविष्ट हो गया। किंतु ये लोग इसका उपयोग अपने ढंग से कर रहे थे। कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। भक्ति के अनुशासन, भगवान की उपासना उनका उद्देश्य नहीं था। किसी वास्तविक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में उनका पहला संपर्क प्रभुपाद से हुआ अपने जीवन में। तथापि कुछ समझने बुझने का प्रयत्न किए बिना वे लोग कीर्तन में आते थे और प्रभुपाद के पीछे गाते थे। प्रभुपाद आमंत्रित करते, आइए, यही सच्चा जीवन है। और कार्ल भी अनुमोदन करता, हाँ हाँ, यही वास्तव में महोत्सव है। तो इस प्रकार कार्ल का अपना शौक था कि वो भारतीय भोजन बनाना सीखना चाहता था। तो प्रभुपाद जब उनके किचन में कुछ भारतीय व्यंजन तैयार करते तो खड़ा होकर देखता। कदाचित उनकी रचनात्मक अंतर्दृष्टि के क्षणों के अतिरिक्त यह अनुभव उसके पूर्व अनुभवों से सर्वथा भिन्न था। फिर भी प्रभुपाद रहते थे और कार्ल की पत्नी ईवा को बड़ा कठिनाई हो रहा था। ये साधु अपने ढंग का व्यवहार करता है, ये अवांछित अतिथि थे जो नहीं चाहती थी, फिर भी वहाँ रुके हुए थे। काल के कला कक्ष की व्यवस्था इस प्रकार की गई, उसमें वह और उसकी पत्नी अकेले रह सकें। शयन कक्ष, रसोई घर और बैठने का प्रयोग जैसे चाहें वैसे कर सकें। यदि वे मारीयाना पीना चाहें, मांस खाना चाहें और कुछ करना चाहें तो उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता हो। यह काल का घर था। यहाँ वह अपनी पत्नी ईवा के साथ और अपने कुत्तों और अपनी बिल्लियों के साथ रहता था, कुछ कुत्ते और बिल्ली रखा था। किंतु अब उन्हें स्वामी जी के साझे में रहना पड़ रहा था। इवा के लिए स्थिति लगभग तत्क्षण असह्य हो गई। एक सप्ताह भी बड़ा कठिन हो गया। अपने घर में स्वामी जी की उपस्थिति उसे बुरा लगने लगी। काले पति, काल काला था, और वो अच्छी नौकरी करने वाली वह स्त्री, स्वतंत्रता की पक्षधर, स्वयं स्वतंत्र श्वेत महिला थी। स्त्रियों के संबंध में स्वामी जी का विचार जो था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने उनकी पुस्तकें कभी नहीं पढ़ी थी, न कभी उनके कक्षा में भाग लेती थी। किंतु उसने सुन रखा था कि स्वामी जी कहते हैं दूसरे के मुँह से कि संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त जौन संबंध नहीं करना चाहिए, और उनके विचार के अनुसार स्त्री को लज्जाशील और पतिव्रता होना चाहिए तथा अपने पति के आध्यात्मिक जीवन में सहायता करनी चाहिए। और स्वामी जी के चार नियमों के विषय में जानती थी, मांसाहार नहीं, अवैध जौन संबंध नहीं, मद सेवन नहीं, द्रुत क्रीड़ा नहीं, और इवा यह निश्चित ही नहीं चाहती थी, ये चारों के विरोध थी। काल के स्वामी जी उनकी अपनी जीवन शैली को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, और उन्हें यह अपेक्षा हरगिज नहीं करनी चाहिए कि वह नौकरानी की तरह कुछ टहल करे, कुछ भी आदेश कर दे। प्रभुपाद कभी अचानक कुछ कह देते तो कहती थी, आप स्वयं कर लीजिए, मुझे मत कहिए। वो सलाह देती थी कि आप स्वयं कीजिए, मुझे मत कहिए। और उसे नशीली दवाएं लेने से मना करना, उनके कुत्ते और बिल्लियों को हटा देना, शराब पीना छोड़ाना, गर्भ विरोधी जौन संभोग को मना करना, यदि स्वामी जी के चले तो उन्हें केवल निश्चित समयों में ही खाना खाना पड़ेगा, हर समय नहीं, कुछ निश्चित चीज़ें ही। इवा को धूम्रपान की गहरी लत थी, इसलिए स्वामी जी संभवतः आसपास रहना नहीं चाहते। वह उनसे भिड़ने के लिए सदा तैयार रहती थी कि कुछ बोलेंगे तो जवाब दूंगी, किंतु प्रभुपाद ऐसा नहीं करते, को मना नहीं करते। किसी दूसरे के घर में रहते हुए असह्य अपेक्षाएं नहीं रख सकते थे, जो उनको सहन न हो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते थे। वे अटारी के अपने निर्धारित कोने में रहते थे और न किसी प्रकार की मांग करते न आलोचना करते। क्या उन्होंने बटतल में अपने मेजमानों को मांस खाते नहीं देखा था और केवल इतनी ही टिप्पणी की थी, इस विषय में कुछ न सोचो। फिर भी उनकी प्रभावपूर्ण आध्यात्मिक स्थिति में युवा को इस बात का दुख था कि काल को उनसे भेंट क्यों हो गई, कहाँ ये मिल गया। युवा के लिए स्वामी जी प्रतिकूल शक्ति स्वरूप थे, और अपनी खुली और स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसने स्वामी को इसे अवगत करा दिया। एक दिन बोल दी सब चीज। जैसे ही स्वामी जी कहते थे कि क्या वह उनके लिए कोई वस्तु ला सकती है, तुरंत झट से कहती थी, आप स्वयं ले आइए। कैरोल बेकर ने देखा कि स्थिति अत्यंत असुविधाजनक और तनावपूर्ण हो गई है। युवा बहुत रुष्ट थी। इवा ने कैरोल से शिकायत की कि वह अटारी का किराया दे रही थी, कड़ा परिश्रम कर रही थी और व्यक्तिगत उनके जीवन शैली को बदल देने की कोशिश कर रहे थे। कैरोल लिखते हैं, कुछ इवा प्रभुपाद के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और वह कार्ल के ऊपर उनके प्रभाव को भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह अपने को बाध्य अनुभव नहीं करती थी, किंतु यह अनुभव करती थी कि स्वामी जी कार्ल को प्रतिबंधित कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इवा की मुख्य आपत्ति यही थी कि स्वामी जी कार्ल को प्रभावित कर रहे थे। कार्ल के साथ उनका संबंध हाल में प्रारंभ हुआ है। कार्ल को मालूम हुआ कि इवा को उसका अधिकतर समय, इवा के साथ उनको अधिक समय रहना चाहिए। कार्ल अपनी पत्नी से सहमत था, फिर भी स्वामी जी को अस्वीकार नहीं कर सकता था। भारतीय संगीत, कविता, धर्मों में रुचि उसको पहले से थी। स्वामी जी के रूप में उनके घर में भारतीय संस्कृति के सभी पक्षों के परंपरागत एक जीता जागता अधिकारी मिल गया था, जिसे वह प्रसन्न करता था। प्रभुपाद के रसोई में अपना भोजन बनाने देने की अनुमति, भारतीय पाक विद्या सीखने की जिज्ञासा, इसके कारण वह प्रभुपाद को प्रसन्न करता था और मृदंग बजाना सीखना चाहता था। स्वामी जी और कार्ल साथ बैठे लंबे समय तक बातें किया करते। उनकी पत्नी को यह प्रसन्न नहीं था। जो समय उसके साथ बिताना चाहिए तो बूढ़े के साथ बिता रहा, एकदम डिस्टर्ब रहती थी। कार्ल ऐसा कुछ बनने का प्रयत्न कर रहा था जैसा वास्तव में वो था नहीं, किंतु वह स्वामी जी को कभी भी संकेत नहीं देना चाहता था कि वो चले जाए। मुझे विश्वास है कि स्वामी जी इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि इस तनाव को समझ गए और शीघ्र ही वहाँ से जाने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे प्रभुपाद से कार्ल का संबंध एक विषम स्थिति में पहुँच गया। बड़ा जूझ रहा था, प्रभुपाद के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहता और पत्नी का रोज झेलता था। तो कार्ल, मैं अपने प्रकोष्ठ को मंदिर बनने नहीं देख सकता। मैं बिल्ली और कुत्ता पाल रखा है, उन्हें वे हटवा देना चाहते थे, इधर उधर घूमते थे, वे मुझे मांसाहारी कहते हैं। उन्होंने हम लोगों को भोजन बदल दिया, वस्तुतः वे अमेरिकी संस्कृति पर प्रहार कर रहे थे, जो नहीं जानती कि वे स्वामी जी कर रहे हैं। यह सब क्या धंधा है? मुझे तो अमेरिकी संस्कृति में उतनी ही आत्मसात करनी है जितने कोई अन्य अमेरिकन करता है। भारत को मैं किसी पुस्तक रिकॉर्ड जैसे निवैयक्तिक माध्यम से समझ कर आत्मसात कर सकता था, किंतु यहाँ तो भगवान का साक्षात प्रतिनिधि विद्यमान था और उनके समान कठिनाई का सामना न मैंने कभी पहले किया न आगे करने की आशा थी। प्रभुपाद की उपस्थिति से कार्ल को जो परेशानी हो रही थी, उसके प्रति वे असंवेदनशील नहीं थे। वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। वस्तुतः वे अपने और ईवा जैसे सभी लोगों को कष्ट से बचा सकते थे, यदि वे अमेरिका न आए होते। किंतु उन्हें आराम या कष्ट की, ईवा को प्रसन्न और अप्रसन्न करने की कोई चिंता नहीं होती। वे कृष्ण भावना सिखाना चाहते थे। वे किसी एक व्यक्ति के प्रति इतना सोचे प्रभुपाद को टाइम नहीं था कि ईवा कितना डिस्टर्ब है, क्या है। प्रभुपाद का मिशन था कार्ल की अटारी उसके लिए उपयुक्त आधार नहीं प्रतीत हो रही थी। प्रभुपाद के सभी मित्र सहमत थे कि उन्हें इस कार्य के लिए केंद्र की ओर अधिक बढ़ना चाहिए। ओवरी और चाइना टाउन केंद्र से बहुत हट कर थे, वे उनके लिए एक नया स्थान खोजेंगे। वो हिपियों के बीच ही बात करते थे, उन सनकियों से ही, कि कोई ऐसा जगह खोजा जाए जहाँ अच्छे से कक्षाएं चल सके, क्लास चल सके। दिन रात कृष्ण भावना के विषय में बोलते सोचते। तो एक दिन कार्ल उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आपको दूसरा जगह खोजते हैं और रूम रेट हम मैं दूंगा, अपने कुछ साथियों से मिल कर दूंगा, लेकिन इस घर में रहना ठीक नहीं है। वो बेचारा चाहता था मदद करना इसलिए उसे पाने में अब समय नहीं लगेगा, क्योंकि किराए का भुगतान हम लोग करेंगे, दूसरा जगह खोजते हैं। एक सप्ताह बीत गया, लेकिन अब तक स्वामी जी को कोई जगह नहीं मिल पाया, वहीं रहना पड़ रहा था। तो एक दिन कार्ल घूमते हुए स्वामी जी के साथ चल रहे थे, तब तक एक व्यक्ति माइक वो ये लिखते हैं, एक दिन बड़े सवेरे किसी ने मुझे जगा दिया, और यह कार्ल का फोन था। वह कह रहा था, स्वामी जी और मैं टहलते हुए आपके घर के पास आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा, लेकिन अभी तो बहुत सवेरा है। वह बोला, ठीक है, पर स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं, वे यहीं निकट में हैं, सड़क के पास, आपके घर के पास। मुझे जल्दी से कपड़ा पहनना पड़ा और जग कर दरवाजे पर आया तो वहाँ स्वामी जी थे। मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं था, किंतु मैंने उनको ऊपर आमंत्रित कर दिया, ठीक है घर में आइए। टेलीविजन पिछली रात से ही चल रही थी, उस पर कुछ व्यंग चित्र कार्टून आ रहे थे। स्वामी जी मेरे और काल के बीच सोफे पर बैठ गए। मैंने एक बिल्ली पाल रखी थी, अपना लिखते हैं विचार, बिल्ली उछलकर स्वामी जी के गोद में आ गई और स्वामी जी ने उठाकर ऐसे फेंका नीचे, अचानक फेंक दिया और हम बातें कर रहे थे, किंतु स्वामी जी टेलीविजन पर व्यंग चित्रों को देख कर कहते ये सब पागलपन है। एकाएक मेरा ध्यान आया कि टेलीविजन चल रहा है या अनावश्यक है, मैं जल्दी से बंद कर दिया और कहा हाँ वास्तव में व्यर्थ है। बातें करते हुए प्रभुपाद ने माई को यह जनाने की कोशिश की कि कार्ल और रीवा के साथ रहना बड़ा कठिन है। कार्ल भी साथ में था और वे वोवरी के अटारी में वापस आकर डेविड के साथ भी नहीं रह सकते हैं। केवल उस एक घटना का अतिरिक्त तो वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर थी। वो पूछ रहा था कि आप वहाँ क्यों नहीं रहना चाहते हैं, अगर उसको समझा दिया जाए। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, वो पागल हो गया है, उससे हमको खतरा है। भारत में एक पुरानी कहावत है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप किसी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाएं, उनके समक्ष बैठें, जितना हो सके सीखें और जब सीख लें तो उसे मार डालें। उसे सौ को एक और किनारे कर दें और उसके स्थान पर व्यास मंच पर बैठ जाएं, स्वयं गुरु बन जाएं। प्रभुपाद बोल रहे थे तो माइक समझ गया, कहा अच्छा अच्छा ऐसी स्थिति नहीं आने दिया जाएगा, नहीं हो सकता है डेविड इस तरह कर दे। तो माइक समझ गया कि स्वामी जी उसे सहायता चाह रहे हैं। जब तीनों सोफे पर साथ बैठे थे तो माइक और कार्ल ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। स्वामी जी माइक की ओर देख रहे थे और माइक सोचने की कोशिश कर रहा था, तो हम स्वामी जी की सहायता कैसे कर सकते हैं? कार्ल ने बीच में पूछा, आप कुछ बताइए ना। माइक ने स्पष्ट कहा कि वह पियानो बजाने वाला कलाकार है, प्रतिदिन अभ्यास करता है, उसके पास दो पियानो, दो जोड़ी तबले, एक वाइब्राफोन और अन्य वाद्य यंत्र थे जो वहीं उसकी अटारी में रखा हुआ था। वादक कलाकार अभ्यास कराने के लिए प्रतिदिन आते थे और घंटों अपने वाद्य यंत्रों पर अभ्यास करते थे। इसके अतिरिक्त उसका अपना रूटीन, समय नहीं था कि कहीं जाकर रूम खोजें। इसके अतिरिक्त उनको एक लड़की के साथ भी समय बिताना पड़ता था और अटारी में एक बिल्ली भी थी। किंतु माइक ने वादा किया कि स्वामी जी हम समय निकालेंगे, आपके लिए जगह खोजेंगे। स्वामी जी ने कहा धन्यवाद, फिर उठकर चल दिए। माइक ने अनुग्रहित अनुभव किया, यह कार्य कराने में कुशल था, वह स्वामी जी का कार्य करना चाहता था। अगले दिन वह विलेज वायस के कार्यालय में गया और उसकी पहली मुद्रित प्रति सारे वर्गीकृत विज्ञापनों पर दृष्टि डाली। जब तक वह उसे एक उपयुक्त संभाव्य स्थान नहीं मिला, उसने उसके लिए मालिक को फोन किया। वह स्थान सेकेंड एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट अर्थात स्टोर का अगला भाग था। उसका एजेंट मिस्टर गार्डिनर माइक से वहाँ मिलने के लिए राजी हो गया। कार्ल और स्वामी जी वहाँ जाने के लिए राजी हो गए। मिस्टर गार्डिनर और माइक वहाँ पहले पहुँचे हुए थे। माइक ने देखा कि स्टोर फ्रंट के सामने वाली खिड़की के ऊपर हाथ द्वारा चित्रित ढंग से अंकित मैचलेस गिफ्ट का एक नाम पट्टा लगा था। मिस्टर गार्डिनर ने स्पष्ट किया कि यह उनका शेष निशान था जब वह स्थान उपहार बेचने वाली एक ऐसी दुकान के रूप में थी। उनकी याद लोगों को अब भी दुखी बनाती है। माइक ने स्वामी जी के बारे में वर्णन करते हुए उन्हें भारत का एक आध्यात्मिक नेता, विख्यात लेखक और संस्कृत का विद्वान बताया। परिचय देने में किराए के एजेंट पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। प्रभुपाद और कार्ल के पहुंचने और प्रत्येक के आत्मीयतापूर्ण परिचय के तुरंत बाद मिस्टर गार्डिनर ने उन्हें एक छोटा स्टोर फ्रंट दिखाया। प्रभुपाद, कार्ल और माइक ने सावधानी पूर्वक उसकी संभावनाओं के विषय में विचार किया। स्टोर फ्रंट खाली, सादा और अंधेरा था, उसमें बिजली नहीं लगी थी और उसमें फिर से पेंट करने की आवश्यकता थी या बैठने के लिए उपयुक्त था, किंतु स्वामी जी के रहने लायक नहीं था। और किंतु $125 प्रति मास की दृष्टि से यह स्थान सस्ता था तथा मिस्टर गार्डिनर ने पीछे के आंगन के ठीक पार स्टोर फ्रंट के बिल्कुल पीछे दूसरी मंजिल पर एक अटारी दिखाई। $71 और अधिक देना पड़ेगा, स्वामी जी वहाँ रह सकते थे, फिर से पेंट करवा दिया जाएगा, कुल मिलाकर $196 होगा और काल माइक और अन्य लोग मिलकर उसकी व्यवस्था करेंगे। प्रभुपाद का विचार मिस्टर गार्डिनर को अपने वर्धमान कृष्ण भावना संघ का प्रथम ट्रस्टी बनाने का हो गया। अच्छा मैनेजर है। परस्पर वार्तालाप के बीच उन्होंने भागवतम के 3 खंड मिस्टर गार्डिनर को उपहार के रूप में दिए। आवरण पृष्ठ के भीतर व्यक्तिगत समर्पण अंकित किए और अपना हस्ताक्षर करके ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी लिख कर दिए। मिस्टर गार्डिनर ने स्वयं लेखक के हाथ से पुस्तक प्राप्त किया, तृप्ति और सम्मान का अनुभव किया। वे कृष्ण भावना अमृत के नए संघ का न्यासी बनने और इसके लिए संघ को $20 प्रति मास देने के लिए राजी हो गया। मिस्टर गार्डिनर की अटारी को पेंट कराने में 1 सप्ताह लग गया। इस बीच माइक ने उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था कर दी, टेलीफोन भी लगा दिया। कार्ल और उसने अपने मित्रों की सहायता से महीने का किराया जमा कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो माइक ने कार्ल के निवास पर प्रभुपाद को टेलीफोन किया। जब स्वामी जी उनके लिए नए स्थान पर ले जाने का समय आ गया है, उस समय वो थोड़े से मित्र वहाँ थे, स्वामी जी के साथ ओवरी वाली अटारी में गए। भले ही उनके समर्पित शिष्य बनने के लिए वे तैयार नहीं थे, सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद को प्रसन्न करते थे तो उनकी सहायता करने के लिए महीने का किराया देने के लिए सब तैयार हो गए। और अब सामान रखना था वहाँ, लेकिन कोई जाने का साधन नहीं था, पैदल जाना था। प्रभुपाद के साथ कुछ सामान हो गया था, 2 ब्रीफकेस और सब क्या क्या, उन सामानों को लेकर प्रभुपाद चल रहे थे। ये चैप्टर ही मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से अब कृष्ण भावना का प्रारंभ बाद में करेंगे, अभी संघर्ष समाप्त कर देते हैं। 6 व्यक्तियों की काफिला प्रभुपाद के साथ चली सामान लेकर, माइकल रॉबर्ट्स और प्रदर टेप रिकॉर्ड। स्वामी जी 2 सूटकेस लिए हुए थे, सारा सामान लिए हुए तेजी से चल रहे थे। माइक और वो अपना सामान, वो लोग भी लिए हुए थे कुछ सामान। तो माइक की बांह जब दुखने लगी तो विचार किया कि हमको मोटर कार लेकर रहना चाहिए था। ऐसे मस्ती में आ जाते थे लोग, कार और लेकर नहीं आए थे तो इस तरह दिक्कत नहीं होता। उसको भी जब उसका हाथ दुखने लगा तब वो विचार किया। जून का अंत था और ग्रीष्मकाल का धुंधला सूरज वकरी के जंगल पर अपनी गर्मी बरसा रहा था। विचित्र काफिला चलता हुआ, कभी रुकता कभी चलता, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कई स्थानों को पार करते हुए ब्रूम और स्पिंग गलियों के बीच भोजनालयों की दुकान, लैंप भंडारों की अनंत प्रतीत होने वाली पंक्तियों के सामने से जा रहे थे। कभी रुकते, कभी सूटकेसों को जमीन पर रख देते, कभी विश्राम करते। वे अंतिम रूप से ओवरी को छोड़ रहे थे। उनके 72nd स्ट्रीट में रहने वाले बिजली के मिस्त्री दोस्त ने राहत का अनुभव किया होगा, यद्यपि उसने शायद उनके इस 2nd एवेन्यू के निवासी को नापसंद किया था। कम से कम प्रभुपाद का स्किड रो पर रहना तो खत्म हो गया। वे साल्वेशन आर्मी विश्रामालय के सामने गृह विहीन लोगों और खुले दरवाजे वाले शराब खानों के पीछे छोड़ते हुए जैसे जा रहे हैं, शराबी लोग जहाँ तहाँ सड़क की रोशनी में जगह जगह पर रुकते हुए, नितांत अपरिचितों के मध्य खड़े होते हुए और अपने पीछे आने वाले मित्रों के जुलूस पर प्रगति का अनुभव करते हुए प्रभुपाद चल रहे थे। कम से कम 6 लोग चल रहे हैं। बोवरी के कलाकार तथा संगीतज्ञ स्वामी जी को अत्यंत विकसित व्यक्ति मानते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि प्रभुपाद की आत्मा उन्हें आगे बढ़ा रही है। उनकी निजी निवास व्यवस्थित कराने में सहायता देना उनके लिए बड़ा खुशी का विषय था। इस बीच चल रहे थे सहायता के लिए स्वामी जी उन पर निर्भर थे, तथापि वे जानते थे कि स्वामी जी उच्च स्तर पर अवस्थित हैं, वे स्वयं उनके रक्षक हैं। जैसे ही वे कहते कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहा है, स्वामी जी और उनके युवा मित्र बोबरी और ह्यूस्टन के कोने पर पहुँचे, दाहिने ओर मुड़े और पूर्व की ओर बढ़ते हुए चलते समय निरंतर आगे गए और नज़र गड़ाए हुए प्रभुपाद ने एक ब्लॉक की दूरी पर सेकेंड एवेन्यू के दक्षिण छोर को देखा। सेकेंड एवेन्यू पहुँच कर वे बाएँ घूमेंगे, फर्स्ट स्ट्रीट से एक ब्लॉक उत्तर की ओर जाकर अपने नए घर में पहुँच जाएंगे। जब ही उन्होंने INDतलमार्ग के प्रवेश द्वार पार किया, स्टोर फ्रंट दिखने लगा जहां मैचलेस गिफ्ट लिखा हुआ था। उन्होंने अपनी सूटकेसों को पकड़ा और आगे बढ़ रहे थे। सेकेंड एवेन्यू और ह्यूस्टन पर तेज यातायात के बीच थोड़ा विश्राम पाकर वे उनके बीच से जल्दी से ही सड़क पार कर गए। वे ऊंचे सदन की दीवार के ऊपर हरे हरे वृक्षों की चोटियों को देखते जा रहे थे। अपने मकान के अगवाड़े और पिछवाड़े की इमारतों के बीच उगे हुए घास फूस देख रहे थे। सड़क के किनारे वाली इमारत में प्रभुपाद का सभागार था और पीछे की इमारत में उनके रहने के और अनुवाद करने के जगह। स्टोर फ्रंट से लगा हुआ उनके उत्तर की ओर एक विशाल 9 मंजिला गोदाम था। स्टोर फ्रंट की इमारत केवल 6 मंजिली थी और सटी हुई बड़ी इमारत का छोटा बच्चा प्रतीत होता था। स्टोर फ्रंट के दक्षिण भाग में प्रभुपाद का नया मंदिर था जो सादे सीमेंट से बना था और उसे लगा हुआ कोई मकान न था। फर्स्ट स्ट्रीट के सामने किनारे पर केवल विस्तृत और व्यस्त मोबिल सर्विस स्टेशन स्थित था। जब प्रभुपाद स्टोर फ्रंट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 छोटे लालटेन तंग प्रवेश द्वार पर लगे हुए थे। वहाँ बिजली नहीं थी। कुछ निश्चित नहीं था कि आगे क्या होगा, किंतु पहले से ही शुभ लक्षण दिखाई दिया। यद्यपि वे अमेरिका के जीवाजन कभी भी पागल हो सकते हैं, किंतु वे प्रभुपाद विश्वास करते थे कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सचमुच भाग ले सकते थे। संभवतः इस नए स्थान में प्रभुपाद अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के लिए वास्तविक दृढ़ आधार प्राप्त कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ प्रभुपाद वहाँ रहना प्रारंभ किए। हरे कृष्णा। तो अब आगे कृष्ण भावना को प्रारंभ करेंगे, कैसे कार्य प्रारंभ कर रहे हैं इसको आप आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार प्रभुपाद की जीवनी है। इन सब कथाओं से हमें बहुत बड़ा उत्साह मिलता है। हम लोग इतनी सुविधाओं के बाद भी लापरवाही में पड़े हुए हैं, आलस प्रमाद, चलो कल कर लिया जाएगा, आज सो लेते हैं। पढ़ने लिखने में, जप करने में, भजन करने में आलस, सारा सुविधा बना बनाया है फिर भी उत्साह नहीं है। प्रभुपाद ने कितना संघर्ष करके यह स्थान हम लोगों को दिया, उनका हम आजीवन ऋणी रहेंगे। देवताओं का उम्र प्राप्त करके भी ऋण नहीं हो सकते। वास्तव में प्रभुपाद का ऋण तभी उतर सकता है जब उनके इच्छा के अनुरूप व्यवहार किया जाए। उनकी इच्छा तो उनके जीवन शैली से समझ में आ रही है। वे चाह रहे हैं कि जन जन को कृष्ण भावना से प्रभावित कर दिया जाए। सभी जीव कृष्ण के सेवक हैं, दास हैं, सबको कृष्ण भक्ति करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से सबको अवगत कराया जाए। अगर इसमें जो जितना सहयोग करता है अपने किसी भी व्यवहार से, वह प्रभुपाद का प्रिय पात्र बन सकता है। और प्रभुपाद की इस कृष्ण भावना, जानते हैं इस संस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है प्रभुपाद का? इन्होंने बड़ा सोच समझकर संस्था का नाम दिया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना। हमारे भावनाओं में संसारिक विषय है, संसारिक भोग है, विभिन्न प्रकार की अस्थाई टेम्पररी योजनाएं हैं जिसका हमारे साथ कोई महत्व नहीं है। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं और योजनाएँ टेम्पररी है। तो हम कृष्ण के साथ जुड़ जाएं, हमारी चेतना कृष्ण से जुड़ कर रहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस या उनकी चेतना है। इसके लिए उन्होंने एक समाज का संगठन किया, इंटरनेशनल सोसाइटी। क्यों इंटरनेशनल सोसाइटी? फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना के लिए। जब इस लक्ष्य की ओर हम प्रभावित होंगे, बढ़ेंगे, तो प्रभुपाद की मनोवांछा पूर्ण हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएंगे और उनके ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। इसके लिए हमें संघर्ष सहने के लिए तैयार होना चाहिए और गंभीरता से भगवत भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री।